कि हमारे समय जब हम स्टूडेंट थे, हमारा समय मतलब 30-35 वर्ष पूर्व की बात है, जब हम भी एट इज मेरे नॉलेज में से कोई ऐसा प्रयास हमने देखा नहीं था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन युवकों के लिए कुछ मार्गदर्शन करने वाली कोई संस्था या कोई संगठन, उनका चरित्र निर्माण या उनको मार्गदर्शन करना, ऐसा प्रयास there wasn't any, हमने तो कोई सुना नहीं था हमारे समय। लेकिन अभी कम से कम पर्याय ऑप्शन अगर कोई चाहता है, हरे कृष्ण मूवमेंट उपलब्ध करा रही है। लगभग सभी इस्कॉन के मंदिरों में, स्पेशली इन इंडिया, हम लोगों के युवकों के लिए कार्यक्रम है इस्कॉन यूथ फोरम, आपने सुना ही, जैसे ये इस्कॉन यूथ फोरम है IYF, तो उसका शाखा या विभाग लगभग सभी मंदिर, आई थिंक इतने 1/3 संसार की, 1/3 1/3 पॉपुलेशन युवकों की होगी। क्यों? कौमारम यौवनम जरा, भगवान गीता में कहते हैं कि 3 अवस्था होती है मनुष्य की। कुछ कुमार होते, कुमार मतलब बॉयज एंड गर्ल्स भी आई उसमें, कौमारम फिर यौवनम युवक, और तीसरे है जरा मतलब वृद्धावस्था बूढ़ापा। 3 अवस्था कही है, द बॉयज यूथ एंड ओल्ड फोक। तो 1/3 होने चाहिए कि नहीं, कि युवक ज्यादा है तो फिर बच्चे ज्यादा होने चाहिए ना, टीनेज। तो बूढ़ों के लिए सभी, भगवान को तो सभी की चिंता है, केवल युवकों की नहीं है, बूढ़ों की भी है और बच्चों की भी। और हमारे प्रोग्राम्स भी सभी एज ग्रुप के लिए है, सभी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए है। तो भी वैसे युवकों पर हम थोड़ा अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि युवकों को भी हमारी थोड़ी जरूरत होती है, और हमको भी युवकों की जरूरत पड़ती ही है। और छोटे जो बालक होते हैं, बच्चे, उनको तो पेरेंट्स गाइड करते रहते हैं, और वो काफी बिजी रहते हैं, एक तो खेल कूद में और दूसरा पढ़ाई में और फिर तीसरा खाने और सोने में। हम बच्चों के ऐसे 3-4 प्रोग्राम होते हैं, सोने खाने का, फिर पढ़ने का और फिर खेलने का, तो उसमें उतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे पकड़ में वो नहीं आते हैं। और उनके पेरेंट्स तो सक्षम है, उनको गाइड कर सकते हैं, करते हैं। वैसे हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं, ताकि अपने बच्चों को फिर इंटर्न वो गाइड कर सकते हैं। फिर वैसे कुछ स्थानों पर हमारे प्रहलाद स्कूल्स भी है, जैसे पुणे में, और भी कुछ स्थानों पर अब शुरू हो रहे प्रहलाद स्कूल्स। छोटे थे ना प्रहलाद, जब वो स्कूल के विद्यार्थी थे तो वो प्रचार करते थे, अपने मित्रों को समझाते थे, तो उस उम्र के बच्चों के लिए प्रहलाद स्कूल्स, या हम लोग संडे स्कूल भी चलाते हैं, संडे स्कूल्स, पेरेंट्स भी आते हैं और बच्चों को लेके आते हैं। तो पेरेंट्स के लिए सत्संग होता है मंदिर में, फिर बच्चों के लिए फिर अलग से कोई स्टोरी टेलिंग, कोई श्लोक रिसाइटेशन वगैरह करते हैं। तो वो हो गए बच्चे, और फिर उनके पेरेंट्स, उनका केयर इस्कॉन करता है। वेल, बूढ़ों के लिए कुछ वृद्ध लोग जुड़े हुए हैं, वो जब करते हैं, जब करने का हम उनको भी प्रोत्साहित करते हैं। तो फिर बच गए हमारे ब्रीफली वृद्धों के लिए इसको ज्यादा कहा नहीं हमने, हमारे पास ज्यादा मर्सी या पेशेंस नहीं उनके लिए क्योंकि हम ये हरे कृष्ण मूवमेंट जो है बड़ा ही एक्टिव आंदोलन है, ये खूब ट्रैवलिंग प्रीचिंग और प्रचार और परिश्रम भी करना होता है जो जो बूढ़े नहीं कर सकते। बूढ़े लोग तो वैसे चरणामृत बांट सकते हैं या कुछ इस प्रकार की कुछ सेवा कर सकते, लेकिन इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद उनका वो कहते थे प्रीचिंग इज इसेंस, हमारे मूवमेंट के लिए प्रीचिंग इज इसेंस, मोस्ट इसेंशियल थिंग, अनिवार्य कार्य इस आंदोलन का तो प्रचार का है, और उसके पहले पहले फिर आचार और विचार भी है। आचार विचार तो मंदिर में हम लोग करते रहते हैं, फिर बाहर जाके हम लोग प्रचार करते हैं। इसमें युवक ही जितनी हमारी इस कोल्ड युवक जितनी सहायता कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उतनी मदद बच्चों से या बूढ़ों से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आपको कह रहा हूं कि हाउ युवक कैसे हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑडियंस है, और आपके लिए भी दिस ये आपके जीवन की ट्रांजिशन होती है। आपके युवक्स फिर उनके लिए कई बार दे आर एट द क्रॉस रोड, क्या दाहिने मुड़ना है बाया मुड़ना है पीछे मुड़ या पीछे तो मुड़ना। सो लॉट ऑफ टाइम्स देयर बिबल्डर्ड, कई क्वेश्चंस है और लाइफ ऑफ यूथ्स, मतलब दीज आर फाउंडेशनल डेज भी होते हैं। जैसे फाउंडेशन बिल्डिंग में फाउंडेशन इज इम्पोर्टेंट, इजंट इट, बिल्डिंग में फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन कितना मजबूत है, हाउ स्ट्रांग इज अ फाउंडेशन, उस पर ही हम उस बिल्डिंग का लाइफ कहो या उसकी हाइट कितने मंजिल वाली, क्या गगन चुंबी प्रासाद बना सकते हैं, ऐसा प्रासाद जो गगन का ही चुंबन करे, जैसे न्यूयॉर्क में बनते हैं ऐसे या हांगकांग में भी, या कुछ इस मंजिल पर तो एक दो मंजिल की कुटिया ही बन सकती है। सो दैट डिपेंड्स हाउ स्ट्रांग इज द फाउंडेशन। तो आपकी ये फाउंडेशनल डेज है युवकों के, युवकों का जो आपकी जो स्थिति है अब जीवन में, ये हरे कृष्ण मूवमेंट की कंट्रीब्यूशन है, स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन। आपको तो मंडेन एजुकेशन तो भारत सरकार या आपका विद्यापीठ वगैरह देता ही है, लेकिन उसमें अभाव है या कमी है, त्रुटि है आध्यात्मिक मार्गदर्शन की। आप लोग या हम सभी लोग अगर केवल शरीर होते, हम लोग केवल हम शरीर ही होते और कुछ है नहीं, हम लोग केवल शरीर, वी आर ओनली बॉडीज, लंप ऑफ मैटर अगर होते या मिट्टी के पुतले ही हम होते, तो फिर केवल मंडेन मटेरियल एजुकेशन से आपका काम बन जाता, आपका मेरा या जिसका ही किसी का जो, अगर हम केवल ही होते तो। लेकिन ऐसा है नहीं, और ऐसा नहीं होने की होने का ज्ञान कईयों को नहीं है। कुछ ही लोग जानते हैं कि हम केवल शरीर नहीं है, और वो जानने वाले सब महात्मा सुदुर्लभ भगवान कहते हैं, ऐसे महात्मा ऐसे ज्ञाता बड़े दुर्लभ होते हैं, वेरी रेयर। ज्यादातर पॉपुलेशन है इस संसार की, उनको कहते हैं देहात्म बुद्धि, देह को ही आत्मा मानते हैं, देहात्म बुद्धि कुणपी त्रिधातु के। और फिर तो स्पिरिट सोल का कोई आत्मा कोई संबंध कुछ ज्ञान नहीं। श्रील प्रभुपाद जब मॉस्को गए थे इन 71 ऊपर बैठे हुए, तो ब्रज भक्ति विलास प्रभु हमारे मंदिर के अध्यक्ष, तो प्रभुपाद जब वार्तालाप कर रहे थे वो प्रोफेसर कटास्क भी, उनका नाम कटास्क, तो उन्होंने कहा स्वामी जी व्हेन द बॉडी इज फिनिश्ड एवरीथिंग इज फिनिश्ड। आप समझे होंगे, जब शरीर समाप्त होता है तो फिर सब कुछ समाप्त होता है। तो ऐसे कहने वाले या ऐसी मान्यता के वो केवल एक ही कटास्क नाम के जो जिनको प्रभुपाद मिले थे, ऐसे एक को मिले एक ने कहा, लेकिन ऐसे कहने वाले वैसे कई है इस संसार में, इस मान्यता ऐसी मान्यता वाले। तो हम लोग मैं कह रहा था कि हम लोग शरीर, अगर केवल शरीर होते जैसे कठास कोई भी समझते थे कि हम शरीर ही है, when the body is finished everything is finished, या फिर प्राचीन समय में एक मुनि हुए चार्वाक मुनि, तो वो भी कहते थे भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्। जब देह जब एक बार भस्म हुआ, राख हो गया, तो वही बात, सब समाप्त हुआ, पुनरागमनो कुतः भवेत्, ये पुनरागमन पुनर्जन्म कहां से होगा जब शरीर समाप्त हो गया, जब शरीर राख हुआ। फिर वो कटास्क भी है या ये चार्वाक या आपके डार्विन है। जस्ट फ्यू डेज अगो पुणे में मैं था, आई डोंट नो और कई अखबारों में आया कि नहीं, तो देर वॉज अ बिग हेडलाइंस, मेरे पास क्लिपिंग वैसे मेरे कमरे में है, तो अमेरिका के और ये कोई पहली बार ऐसा समाचार मैंने नहीं पढ़ा, कई पहले भी आया था। नाउ अनदर स्टेट इन अमेरिका, कई स्कूलों के टीचर्स स्टूडेंट्स दे आर अगेंस्ट दिस डार्विन्स थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। उनका कहना कि मैं भी ये थियोरी है बट नॉट अ फैक्ट। और ये अमेरिका से रिपोर्ट आया, अलग अलग स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब 50 स्टेट्स, अमेरिका में 50 स्टेट्स है, दे आर यूनाइटेड, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। तो ये तीसरी या चौथी बार एक एक स्टेट करके दे आर कमिंग टू दिस कंक्लूजन कि ये डार्विन्स थ्योरी ऑफ दिस इज बोगस, दिस शुड बी रिजेक्टेड डिनाउंस्ड वगैरह वगैरह। तो जिसमें डार्विन ये सिद्ध करने का प्रयास करता है कि कुछ 5-6 हजार अभी 6-7 हजार वर्ष पूर्व ही अभी जो प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग का जो वर्जन या एडिशन जो है प्रेजेंट, ये कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, कुछ 6-7 हजार वर्ष पूर्व ऐसे उस वक्त ये बने हम, और उसके पहले तो मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीसी जो थी वो मंकीज बंदर थे, एप्स। तो दूसरे शब्दों में प्रभुपाद कहा करते थे कि डार्विन ने कहा कि हम बंदर की औलाद है, शास्त्र या हमारा धर्म कहता कि हम ब्रह्मा की औलाद है, ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के पहले जीव ब्रह्मा थे। तो गॉडलेसनेस या गॉडलेस सिविलाइजेशन को मैं भी शब्दार्थ में देख रहा था, या मटेरियल सिविलाइजेशन को कहा है जड़वाद, जड़वाद मटेरियलिज्म को कहा जड़वाद या अनात्मवाद, अन आत्मा, आत्मा नहीं है। मटेरियलिज्म मतलब एक तो जड़, मतलब जड़ जड़ केवल डेड, या दूसरा पर्याय वाचक शब्द दिया है शब्द शब्दकोश में अनात्मवाद, आत्मा नहीं है, सोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आजकल का जो एजुकेशन है, फिर उनको टास्क भी है, प्रोफेसर जो मॉस्को में थे या चार्वाक जो प्राचीन काल में हुए या डार्विन भी कुछ समय पूर्व हुए, और फिर तो ये और सो मेनी अदर्स सब मिलके ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की है जिसमें यही मान्यता कि हम लोग केवल मैटर है या थोड़ा माइंड है और सेंसेस भी है, तो इसके संतुष्टि के लिए अगर कोई ऐसी शिक्षा, या मैं टू से इट ब्रीफली, या ऐसी शिक्षा मनी मेकिंग। व्हाई मनी मेकिंग? क्योंकि मनी टॉक्स एंड एवरीथिंग वॉक्स कहते हैं, मनी टॉक्स एवरीथिंग वॉक्स। तो मनी इज गॉड, अ टाइम इज मनी। तो विद्या के पीछे का उद्देश्य हुआ है हाउ टू मेक मनी, इज दैट काइंड ऑफ राइट कंक्लूजन? विद्या उसका पीछे का अधिकतर उद्देश्य होता है हाउ टू मेक मनी, एंड वंस यू हैव मनी देन यू गो फॉर शॉपिंग। जो जो नोएडा जो ये सेंटर है ना, नोएडा सिटी सेंटर, सामने वाला जो ये ब्लैंक वैकेंट रिक्त स्थान आप देख रहे हो, बहुत यहां से मैं जो देख रहा हूं आगे अक्रॉस द स्ट्रीट, इसको सिटी सेंटर कहा है। और सिटी सेंटर में दो ही बिल्डिंग्स अब बन रही है, टू बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन, और दोनों बिल्डिंग्स में सिनेमाज दिखाए जाएंगे। ये दोनों बिल्डिंग दे आर नोएडा एंटरटेनमेंट सेंटर्स के नाम उनको दिए जा रहे हैं। देयर विल बी शॉपिंग, सिनेमाज एंड फूड। तो लोग जो विद्या कमा के, उसको वैसे विद्या नहीं कहा जा सकता, जिसको आजकल पढ़ाया जाता है स्कूलों में, वो वैसे विद्या टेक्निकली उसको विद्या नहीं कहा जा सकता। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम कहा है, अध्यात्म जिसका आत्मा से संबंध है उसको विद्या कहा है, और रेस्ट जो है उसको अविद्या कहा है, विद्या अविद्या। तो कई बार तो मैं उसे पर्सनल है ये, जहां जहां विद्यालय लिखा है वहां एक पेंट और ब्रश लेके जाना चाहिए, और क्या डालना चाहिए वहां आगे, अ लिखना चाहिए, अविद्यालय, क्योंकि वह आत्मा का जड़वाद यस, मटेरियलिज्म यस, अनात्मा की बातें, तो मनी मेकिंग की बात। पुरुषों को वैसे आप पुरुष हो, पुरुषार्थ, आई एम समबडी, आई एम अ फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग, अगर आपको साबित कराना है तो आपको चार कार्य करने चाहिए हमारे धर्म के अनुसार, इसको पुरुषार्थ कहते, पुरुषार्थ जिसकी संख्या बताई है चार, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे हैं। देन यू आर कंप्लीट, फुल फ्लेज, पूरे विकसित मानव या मनुष्य आप तभी हो, पुरुष आप तभी हो, जब आप ये चार पुरुषार्थ चारों को आपने कमाया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो क्रम देखो कैसे है, धर्म पहले है और बीच में है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। तो जिस व्यक्ति जो व्यक्ति शुरू करेगा धर्म से, वो पहुंचेगा मोक्ष तक। बीच में थोड़ा धर्म के अंतर्गत या धर्म जितने काम और अर्थ को अनुमति देता है या स्पिरिचुअलाइज्ड वेल्थ जो धन है उसको कैसे आध्यात्मिकीकरण करना है, ये धर्म सिखाता है। हम अगर धार्मिक है तो फिर हमारे लिए पैसा लक्ष्मी है। हम लोग मंदिर में पैसे को पैसा नहीं कहते, हम लोग लक्ष्मी कहते हैं। मतलब पैसे को हमने क्या किया, आध्यात्मिक बनाया, स्पिरिचुअलाइज बनाया। जब भगवान की सेवा में उसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम स्वयं ही हिरण्यकश्यपु अगर है या हम रावण है तो फिर, या राक्षस है, तो हम लोग उस धन को, जैसे रावण ने सीता को अलग किया राम से, तो हम लोग आप समझ रहे हैं? अगर हम धार्मिक अगर है और धन आता हमारे पास तो हम उसको लक्ष्मी बना के उसका भी उपयोग करते भगवान की सेवा में, और थोड़ा कुछ काम भी, कुछ सीमा तक काम भी अलाउड है, इतना काम कर सकते, मतलब सम सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसका भी कुछ मर्यादा, कुछ हद तक हम कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट करेंगे तो फिर हम लोग पशु हो गए। तो मनुष्य को मनुष्य या सभ्य पुरुष, सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग बना के रखना है तो वो बनाता है धर्म, और फिर उसका अर्थ और काम भी विद इन धर्म का जो लिमिटेशन है, बाउंड्रीज है, गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत उसका अर्थ और काम भी होगा अगर वो स्वयं धार्मिक है तो। और फिर ये तीन सोपान उसे कहां पहुंचा देगा, सीढ़ी इज गोइंग हायर, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो चारों पुरुषार्थ वो प्राप्त कर रहा है। शुरुआत है धर्म से, इन द मिडल रास्ते में थोड़ा अर्थ, थोड़ा काम, क्योंकि वो धार्मिक होने के कारण वो धन टेक ओवर नहीं करेगा, डोमिनेट नहीं करेगा। धार्मिक होने के कारण ही कैन कंट्रोल द मनी, ही कैन यूज द मनी, नॉट अब्यूज द मनी, और नॉट लेट मनी यूज, मनी उसका चार्ज नहीं लेगी। जैसे जेब गर्म होता है, जेब गर्म और पेट नरम तो फिर व्यक्ति दौड़ता है। अगर धर्म नहीं है, दिमाग में धर्म नहीं है लेकिन जेब तो गर्म है और दिमाग में धर्म नहीं है, तो फिर वो दौड़ेगा, एंटरटेनमेंट की ओर दौड़ेगा। मतलब वो मनी को ही विल अब्यूज, एक्सप्लॉइट। तो ऐसा व्यक्ति देखिए, तो हमारे अधिकतर लोगों का जीवन अर्थ से शुरू होता है, धर्म है ही नहीं। शुरुआत कहां से होती है? अर्थ से होती है। तो उनकी पहुंच कहां तक होगी? केवल काम तक होगी। जिसकी शुरुआत धर्म से है वो मोक्ष तक पहुंचेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लैडर तक जाएगा, जो फाइनल एंड टॉप मोस्ट है। लेकिन जिसने धर्म से शुरुआत ही नहीं की, उसने शुरुआत केवल अर्थ से की, तो अर्थ से वे केवल काम तक पहुंच जाएगा। सो इट्स नो बिगिनिंग, इसीलिए उसका अल्टीमेट जो एंडिंग मोक्ष तक, लिबरेशन वगैरह की बात है, वहां तक वो पहुंचता नहीं है। तो प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन, उसमें प्रेजेंट डे एजुकेशन भी है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या ये सही है, जीवन का कहो या शिक्षा का उद्देश्य अर्थ या धन कमाना, और मैं अंग्रेजी में कह रहा था कि अधिकतर मनी मेकिंग, एक एजुकेशन होता है मनी मेकिंग के लिए, मनी मेकिंग, दूसरा मैन मेकिंग, मैन मेकिंग कहो या कैरेक्टर बिल्डिंग, मैन मेकिंग। तो फोकस तो मनी मेकिंग पर ही है। सारे हमारे जो राजनेता है सभी मिलके फोकस तो ये मनी पर ही है। और मनी, जब मनी इज देन स्वीटर देन हनी और कई बातें हैं, तो और व्यक्ति फिर काम की ओर दौड़ता है। तो इस्कॉन का, जैसे शुरुआत में मैं कह रहा था, इस्कॉन ने नोट किया है, और फिर केवल इस्कॉन अकेला ही, अकेली संस्था इंस्टीट्यूशन नहीं है, और कईयों का ये ऑब्जर्वेशन है, इस्कॉन का भी है, श्रील प्रभुपाद का ये ऑब्जर्वेशन है कि आजकल जो एजुकेशनल सिस्टम इस जो युवकों के लिए है, आपके लिए है, कुछ आप अब भी विद्या या शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो, कुछ अभी अभी उसे फारिग हुए हो, इसमें आत्मा का अभाव है। आत्मा, परमात्मा, धर्म का अभाव है। इसीलिए ये जो एजुकेशन है, ये इट इज इनकम्प्लीट। इसीलिए आपको ये जो फाउंडेशन, जिसको मैंने ये कहा कि ये फाउंडेशनल डेज है आपके, ये फाउंडेशन वीक है, क्योंकि इट लैक्स दिस रियल स्पिरिचुअल एजुकेशन। और इतनी सारी पढ़ाई के उपरांत भी कई स्टूडेंट्स तो पढ़ते ही रहते थे, स्टडीइंग ऑन एंड ऑन, आधा जीवन तो उनका पढ़ाई में चला जाता है। इतने अध्ययन के उपरांत भी वे दे स्टे इन इग्नोरेंस, टोटल इग्नोरेंस। किस बात का इग्नोरेंस, किस बात का ज्ञान? मैं कौन हूं इस बात का अज्ञान, या भगवान कौन है, और क्वेश्चंस ऑफ दिस नेचर, ये जानना भी हम लोगों के लिए इसीलिए अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम लोग आत्मा को, आत्मा की भूख प्यास, ये आपको समझ में आता है ये टर्म्स, इसीलिए मैं कह रहा हूं भूख और प्यास, उसको शांत नहीं करेंगे, आत्मा को समाधान नहीं करेंगे आत्मा का, तब तक हम लोग भी शांत और सुखी नहीं हो सकते। बाइबल में भी कहा है, not by bread alone. उनका पूरा भी है उनका मंत्र आई डोंट रिमेम्बर द होल थिंग उनका कहना है कि नॉट बाय ब्रेड अलोन हम लोग जी सकते हैं केवल कोई रोटी उसके साथ ओके बटर भी है ब्रेड एंड बटर नॉट बाय ब्रेड एंड बटर आप कहोगे नॉट बाय ब्रेड अलोन देन सम बटर ना ना ब्रेड भी है बटर भी है इससे भी पेट नहीं भरेगा हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि हम लोग केवल मिट्टी के पुतले नहीं है हम लोग स्पिरिट सोल भी है वी आर सोल्स बेसिकली क्या हम लोग इस शरीर को प्राप्त करने के पहले हम लोग सोल पहले के सोल है और जैसे घर बनाने वाला पहले होता है कि घर पहले होता है यस देन फिर घर में प्रवेश करता है उसको निवास फिर उस निवास में वो रहता फिर निवासी हो जाता है तो ये शरीर भी एक एक निवास स्थान है आत्मा का निवास स्थान तो हम लोग या भक्त लोग या विद्वान जो होते हैं गीता में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनी चैव स्वपाके जो पंडित समदर्शिना जो पंडित होते हैं जो सचमुच जो ज्ञानी होते हैं उनकी समदृष्टि से देखते हैं सभी की ओर उनकी समदृष्टि होती है और किनको किनको समदृष्टि से देखते हैं तो भगवान उस श्लोक में इस वाक्य में कह रहे हैं ब्राह्मण को फिर गाय को कुत्ते को हाथी को चांडाल को वो समदृष्टि से देखते हैं तो आप वैसे बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो उसमें तो कोई समान या सामान्य बात तो ज्यादा है नहीं एक कुत्ता है एक है हाथी कुत्ता छोटा होता है ना हाथी बहुत विशाल होता है हाथी के एक पैर से 20 कुत्ते बन जाएंगे इतना तो कुत्ते को हाथी को चांडाल को गाय को ब्राह्मण को एक दृष्टि से देखता है पंडितः समदर्शिना तो मतलब यह जो दृष्टा देखने वाला जो व्यक्ति है वो शरीर को नहीं देख रहा है किसको देखता है वो सीधे सोल को देखता है हर बॉडी में हम तो यह मनुष्य ही एकत्रित हुए हैं लेकिन ये सोल जो है ये कोई मनुष्य योनि से ही लिमिटेड नहीं है जहां भी योनि है जिनकी संख्या 84 लाख कही गई है और उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बताया है जलजा नवलक्षानी 9 लाख जल में रहने वाली स्पीसीज है कृमया रुद्र संख्या का जो कृमि मतलब जर्म्स वर्म्स वो 11 लाख बताए हैं और क्या है चतुष्पाद जो 4-legged एनिमल्स है दे आर सम 30 lakhs और जो वनस्पति है पेड़ पौधे दीज आर 30 lakhs आप गिन रहे हो 9 + 11 + 30 + 40 पक्षी नाम 10 लक्षानाम पंछी जो है वो 10 लाख बताए 10 lakh varieties of birds. सारे भारत में नहीं होंगे और ये भी जरूरी नहीं कि सारे इस पृथ्वी पर होंगे क्योंकि आगे का जो इस मंत्र का अंतिम जो भाग उसमें कहा है मनुष्यानाम चतुर्लक्षानाम मनुष्य की 4 लाख प्रकार की योनियां बताई है तो इतनी सारी तो है नहीं निग्रोज वगैरह कहेंगे तो शायद कोई डिफरेंट तो 2 हो गया और तो कुछ थोड़ी थोड़ी ऐसा कुछ छोटा लिस्ट बन सकता है, लेकिन फिर स्वर्ग में जाएंगे तो अदेवता है, यक्ष है, किन्नर है, किम पुरुष, मतलब किम पुरुष, अरे ये पुरुष तो नहीं है, वानर को कहते हैं, अर्धे पुरुषस मनुष्यस, ऐसा प्रश्न पूछा, क्वेश्चन मार्क। लेकिन और भी ब्रह्मांड है और प्लैनेट्स है, दिस इज लाइफ ऑन सो मेनी प्लैनेट्स, और कई सारे ब्रह्मांड भी बताए, तो इस प्रकार ग्रैंड टोटल कही है 84 लाख। तो अलग अलग योनि है, तो हर योनि मतलब हर योनि में आत्मा है, द स्पिरिट सोल, और हर योनि मतलब उतने प्रकार के, गीता में भगवान इस शरीर को वस्त्र कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये शरीर को यूनिफॉर्म कहा है, आउटफिट कहा है, वस्त्र है। तो 84 लाख योनि मतलब 84 लाख प्रकार के क्या हो गए, क्लोज हो गए, इस सुपर बाजार वस्त्रों का सुपर बाजार, जिसमें कितने वैरायटी के वस्त्र है, 84 लाख। तो यू पिक एंड चूज, और ये भी समाज है कि हम लोग इस वस्त्र पहनते 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 फेक केक जीर्णानि यथा विहाय, एक शरीर को छोड़ दिया, वस्त्र को छोड़ दिया, नया धारण किया, फिर और उस नया धारण करते आईने में देखते हैं हम लोग ऐसे करते करते हम लोग अब जो पहने हैं ये वस्त्र, दिस इज सपोज टू बी द बेस्ट यूनिफॉर्म आउटफिट, इसीलिए भी इसको बेस्ट माना है, नॉट जस्ट बाय लुक, क्योंकि कई सारे मोर हमसे अधिक ब्यूटीफुल है, यस और नो, पीकॉक्स आर वेरी ब्यूटीफुल, कुछ पंछी है, कुछ पशु भी मनुष्य से लगता है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन ब्यूटी को मारो गोली ब्यूटी का प्रश्न इस मनुष्य योनि को मोस्ट एडवांस या मोस्ट, क्योंकि इसमें मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन है अन्य योनियों की तुलना में, तो फेवरेबल बात यह है कि इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में ही केवल जो चर्चा हम लोग यहां कर रहे हैं, डिस्कशन दैट वी आर हैविंग हियर राइट नाउ, ये केवल मनुष्य योनि में संभव है, इन नो अदर स्पीसीज। और इतना ही नहीं, मनुष्य योनि में भी जो 4 लाख हमने कही, जो शास्त्र में कहा 4 लाख मनुष्य योनि है, उसमें कहा कि 1 लाख सिविलाइज्ड है सभ्य, और 3 लाख तो अनसिविलाइज्ड, मतलब वो तीन जो अनसिविलाइज्ड 3 लाख अनसिविलाइज्ड, वो उनके साथ ही बात नहीं कर सकते, ये धर्म की बात जो चर्चा भी यहां हो रही है, तो यू हैव टू बी सिविलाइज्ड, ह्यूमन बीइंग में भी सिविलाइज्ड होना चाहिए, सभ्य। तो हमारी जो बुद्धि है, मनुष्य की जो बुद्धि है, दिस इज सपोज टू बी ऑफ अ सुपीरियर नेचर, तो सुपीरियर नेचर की बुद्धि इसीलिए मानी गई है क्योंकि हम लोग सुपीरियर, हमारा जो नेचर है, स्पिरिचुअल नेचर जो है, यह सुपीरियर जो जगत है इस संसार के परे, जो वैकुंठ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसको जानने की क्षमता केवल मनुष्य के पास है, हु इज एंडाउड ब्लेस्ड प्रिविलेज्ड विद दिस शार्प हायर इंटेलिजेंस। अनफॉर्चुनेटली इस हायर इंटेलिजेंस का उपयोग मनुष्य एक्सप्लॉयटेशन के लिए कई बार करता है, आजकल कर रहा है, how to exploit Mother Nature kaho, yeah. So many things, or even other animals, to kill them and eat them. इसमें मनुष्य अपनी superior intelligence का प्रदर्शन करना चाहता है. तो फिर प्रभुपाद कहते हो, you are all children of God. पशु भी तो भगवान की संतान है और मनुष्य तुम भी भगवान की संतान हो. तो क्या एक पिता चाहेगा कि बुद्धिमान उनका पुत्र थोड़े कम बुद्धिमान या बुद्धू भाई को मारे? ऐसा तो कोई पिता नहीं चाहेगा. लाइकवाइज भगवान भी ऐसा नहीं चाहेंगे. तो मनुष्य अपनी बुद्धि का कुछ गलत प्रयोग कर रहा है. इतना यह जिसको मटेरियल सिविलाइजेशन, ये सब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और चंद्रमा पर जाना है या कितनी फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन नहीं बदला है. सेम मटेरियलिस्टिक मैसेज, साधारण वही, वेयर इज मनी, वेयर इज मीट, वेयर इज सेक्स, वेयर इज दिस, वेयर इज वेयर हाउ व्हेन, सारा इंफॉर्मेशन, द एज ऑफ इंफॉर्मेशन. ये सभी का लक्ष्य तो मैटर है, अनात्मा है या जड़वाद है. और ऐसी इंफॉर्मेशन फटाफट जा रही है, आ रही है, और जिसके कारण वैसे हम लोग अधिक परेशानी में ही आ जाते हैं. इसके साथ अगर तो इसका मैं कह रहा था कि हमारा ऑब्जर्वेशन है और उनका भी होगा कि संसार अपने को और युवकों को सभी को अनात्मा या तो मैटर मान के बैठा है. उसी प्रकार का एजुकेशन भी दे रहा है. तो आत्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा के खाद्य और पेय, उसका ड्रिंक, उसका फूड की कोई व्यवस्था नहीं है. तो आजकल के एजुकेशनल सिस्टम में जो अभाव है, भौतिकता के प्रभाव के कारण जो अभाव है, या आज दोपहर को हम लोग बात कर रहे थे कैसे द इंग्लिश मैन, ब्रिटिशर्स कुछ 50 से अधिक वर्ष पूर्व तो छोड़ो भारत, क्विट इंडिया, दे क्विट, दे वेंट, एक्सक्यूज मी. लेकिन जो एजुकेशनल सिस्टम उन्होंने सेट की थी, सिलेबस या जो भी, वो सेम चलता आ रहा है. तो हमने कहा उसके रिस्पांस में कि इनफैक्ट हम लोग कुछ इंडिपेंडेंट तो नहीं हुए हैं. कुछ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो थोड़ा कुछ आ गया, क्योंकि हमारे हम में से कुछ लोग प्रधानमंत्री अगर अपने ही हो ऐसा बनने के लिए बड़े उत्कंठित थे. एट एनी कॉस्ट इस देश के दो टुकड़े भी हो जाते हैं, एक पाकिस्तान दूसरा हिंदुस्तान, डजंट मैटर, गो अहेड. तो कुछ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस प्राप्त किए, लेकिन एजुकेशनल सिस्टम तो वही रही जो अंग्रेज के जमाने की थी. और महात्मा गांधी केवल वो कहते तो आए कि हमें इसीलिए देश स्वतंत्र करना चाहते, ताकि हम स्वतंत्र भारत में हम अपने संस्कृति और धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं. या वो कहा करते थे कि यस हम लोग राम राज की स्थापना करना चाहते हैं, राम राज. तो वो तो केवल स्वप्न ही रहा है. दैट हैज जस्ट दैट वॉज अ ड्रीम एंड दैट इज स्टिल अ ड्रीम. एंड इन नियर फ्यूचर तो कोई नहीं लग रहा है कि कोई राम राज, एट द प्रेजेंट मोमेंट कोई राम राज नहीं सोच रहा है. Even Abdul Kalam, pati, rashtra ka pati, unka goal hai, his dream is now by 2020, his desh ko kya? First world country, like America vagara jis status mein hai, first world countries. Rubbing the shoulders. तो वो status इस देश को प्राप्त होना चाहिए, हो सकता है, why not? और वो भी अपना power का, अपने position का, कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी है उनके पास, उसका उपयोग करते हुए ही इज इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स एंड द यूथ्स ऑफ दिस नेशन, ताकि वो रियलाइज हो जाए बाय 2020 हमारे देश का इस प्रकार का उत्थान हो, विल बी दिस काइंड ऑफ कंट्री. लेकिन शायद मैंने लास्ट मंथ जिस दिन मैंने ये पढ़ा, ये अब्दुल कलाम का ये स्टेटमेंट एक दिन पढ़ा मैंने, बट 6 weeks ago मैंने एक दिन पढ़ा आफ्टरनून में, और उसी शाम को मैं एक प्रोग्राम में जा रहा था, तो जो व्यक्ति मुझे ड्राइव कर रहे थे ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट, क्या कहते साइक, जो मानस, तो जो मन के रोग ठीक करते हैं. ओके, लंबा हो गया. तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं इस देश में, और इवन इन जो बीमारियां 40 साल की उम्र में होनी चाहिए थी, अब 14 साल की उम्र में या 24 साल के जो युवक है, दे आर अंडर दिस डिप्रेशन एंड स्ट्रेस. और उन्होंने कहा बाय 2020 ये जो स्ट्रेस लेवल है बढ़ रही है, दिस विल बी एट द हाईएस्ट लेवल. तो एक ही दिन में मैंने दो, एक विजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 2020 तक हम इस देश को ऐसा देश बनाएंगे लाइक अमेरिका, लाइक दिस, लाइक. और फिर अंडर करंट जो हकीकत की बात है, जो द बिटर ट्रूथ या नेकेड फेस ऑफ रियालिटी जो है, जो फैक्ट्स है, डॉक्टर जिनके साथ डील कर रहे हैं, दे स्ट्रगलिंग, तो उनका अंदाजा है, उनका एस्टिमेशन है कि बाय 2020 हमारे देश के लोगों की, युवकों की मन की स्थिति, दे विल बी फिट, मैनी ऑफ देम विल बी फिट फॉर मेंटल हॉस्पिटल्स ओनली, और सम ऑफ देम विल बी इनक्यूरेबल, और दे विल बी जस्ट hopeless cases. So, इससे हम लोग चिंतित है या प्रभुपाद चिंतित है. तो हम लोग आत्मा को टाल नहीं सकते, आत्मा को इग्नोर नहीं कर सकते. बेसिकली इग्नोरेंस, जिसको कहते हैं इग्नोरेंस, वेन यू इग्नोर द सोल, उसको इग्नोरेंस कहते हैं. यू इग्नोर द नॉलेज, the facts. तो आत्मा को हम लोग टाल नहीं सकते, आत्मा की ओर ध्यान देना होगा, आत्मा को समझना होगा, आत्मा के लिए कुछ करना होगा. तो प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन, इंक्लूडिंग एजुकेशनल जो व्यवस्था है, जिस प्रकार की, जिस पर विदेश का इतना प्रभाव, अंग्रेज जमाने में, ब्रिटिश काल में जो एजुकेशनल सिस्टम थी, वो आज तक मोर और लेस वही चलती आ रही है. देश सब स्वतंत्र हुआ तो हुआ और हम कोई राम राज की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं, कुछ रावण राज के काफी अधिकतर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो who knows, तो जब चर्चा हम लोग आज आफ्टरनून में कर रहे थे तो हमने कहा कि कहते why not, बड़े बड़े लीडर्स को क्यों नहीं समझा सकते, तो हमने कहा yes, it's not going to be that easy, लेकिन मीन टाइम वी डोंट वॉन्ट टू स्टॉप, जो हम लोग कंसर्न है एंड वी नो वॉट टू डू ऑल्सो। जैसे हरे कृष्ण मूवमेंट, हम लोग युवकों के लिए टू गाइड दैम, उनका मटेरियल साइड तो ठीक है, मटेरियल एजुकेशन तो दे आर एजुकेटेड, लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन ऑलमोस्ट नील या वेरी लिटल, तो वो एजुकेशन वो आध्यात्मिक ज्ञान मार्गदर्शन करने के लिए इसका पहले ही एक्टिव है, कार्यरत है, इसीलिए इस्कॉन यूथ फोरम की स्थापना हुई है। और अब नेक्स्ट वीक जो जगह जगह पर जो प्रोग्राम चलते थे इस्कॉन यूथ फोरम के ऑल ओवर इंडिया, तो उस सभी स्थानों से यूथ्स एकत्रित होंगे, सभी नहीं आएंगे लेकिन हर स्थान से कुछ जाएंगे। पुणे में 14, 15 और 16 को एक इस्कॉन यूथ फोरम, नेशनल यूथ फोरम, क्या नाम है, नेशनल यूथ फेस्टिवल, इस्कॉन यूथ फोरम के ही स्टूडेंट्स का नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाएगा, जिसमें हम लोग कुछ 5,000 स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो यहां से भी स्मॉल बैच, स्मॉल ग्रुप, स्मॉल डेलीगेशन, एक नोएडा से, दिल्ली मंदिर से, कुछ पंजाबी बाग से, कुछ चंडीगढ़ से, ऐसे अलग अलग स्थानों से, नॉर्थ इंडिया वृंदावन से जा रहे हैं। तो हम लोग कंसर्न है और इसलिए हम ये यूथ फोरम चलाते हैं। इट विल बी गुड फॉर योर सोल, फिर आपका एजुकेशन जो है कंप्लीट होगा, फिर आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होगा, सारा इम्बैलेंस होगा, सारा स्ट्रेस या फोकस का, फोकस ऑन द बॉडी, अपकीप ऑफ द बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, फीड द बॉडी, डेकोरेट द बॉडी, और बॉडी 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 ऑल द वे, जस्ट द बॉडी। कोई मेहमान आया है आपके यहां, मान लो no one is coming here तो उसके कपड़े तो आपने, you are taking care of his clothes, सुबह का मेहमान आया है, आपके वस्त्र कपड़े वगैरह है जी कोई, तो कपड़े ले लिए, उसका उसकी धुलाई चल रही है, सुखा रहे हैं, इस्त्री कर रहे हैं, लेकिन उस मेहमान को खिलाया नहीं उन्होंने, कुछ खाने के लिए कुछ नहीं दिया, तो ये गेस्ट का कैसे केयर, कंप्लीट केयर हुआ, सारे वस्त्रों का धुलाई वगैरह तो अच्छा चल रहा है, स्त्री भी चल रही है, सब उनको खिलाना भी तो चाहिए ना। तो अतिथि के, मेहमान के वस्त्र मतलब पूरा मेहमान नहीं है, उसी प्रकार हमारा शरीर मतलब भी हम पूरे नहीं है, शरीर का तो ख्याल हम लोग करते हैं या करने को हमें थोड़ा कुछ सिखाया है, लेकिन व्हाट अबाउट द सोल, व्हाट अबाउट, जब पिंजड़े में तोता होता है तो केवल पिंजड़े का डेकोरेशन करके काम नहीं चलेगा, तोते को भी कुछ अमरूद वगैरह खिलाना होगा कि नहीं, अदरवाइज वन डे क्या होगा, पिंजरा ही रह जाएगा। तोता तो गया काम से, रैम रैम कह के वो फिनिश्ड। तो आपको आत्मा का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान जो मनुष्य को अति अनिवार्य है, और केवल मोक्ष के लिए ही नहीं, मोक्ष के लिए भी इसका उपयोग है, इवन टू लीड अ हेल्थी लाइफ, इवन हेल्थी फैमिली लाइफ, हेल्थी लाइफ। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हेल्थी लाइफ भी संभव नहीं है। पीपल आर लूजिंग, सफरिंग, बैड हेल्थ, बहुत बहुत बीमारियां हो रही है, कितनी सारी बीमारियां। जस्ट लास्ट वीक दूसरा एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, ऐसे केसों में आते ही रहते हैं। 50 लाख इस देश में हर वर्ष 50 लाख आर डाइंग द हार्ट रिलेटेड डिसीजेस जो है उससे, स्वाहा 50 लाख, टोबाको से इतना, गुटका से इतना, मटका से इतना, फटका से इतना, सारा कवर हो गया। तो जैसे हम आपको पूछ रहे थे शुरुआत में, टी टोटलर्स हाउ मेनी आर नो स्मोकिंग वगैरह, तो ये देखो लोग तो सोचता है वी डोंट वांट टू बी रिलीजियस, नाउ वी आर गोइंग टू बी स्मोकिंग। एंड यस, यू कैन स्मोक एंड लीव लाइफ किंग साइज, एक ब्रांड का उनका एडवर्टाइजमेंट, लीव लाइफ किंग साइज। क्या करना है किंग साइज लाइफ जीने के लिए? केवल आप हमारे सिगरेट पियो, फिर हो गए आप किंग हो गए। तो ऐसा एक बोर्ड हमने पढ़ा था, हम बताते हैं, हम दिल्ली से आ रहे थे नोएडा, तो हमने ये सब बोर्ड पढ़ा, लीव लाइफ किंग साइज, इसमें किंग को दिखाया था। जब लोग पीते भी तो उनके कोई किंग अंदर प्रवेश करता है उसमें, किंग, ऐसा कोई जादू है उसमें, फील्स आई एम ए किंग, इसका सब चाव। तो पढ़ा हमने लीव लाइफ किंग साइज, फिर और थोड़े आगे गए तो फिर और एक साइन बोर्ड पढ़ा हमने, उसमें लिखा था कैंसर हॉस्पिटल दिस वे। So, ये जो कनेक्शन है, आई मीन ये इतना समझ में नहीं आ रहा है कि इसका ये स्मोकिंग एंड देन नेक्स्ट इज अ कैंसर, नेक्स्ट इज सो मच। तो हम लोग जो है हरे कृष्ण भक्त, जो भागवत के आधार पर हम लोग कहते हैं नो मीट ईटिंग, नो फिश, नो एग्स, फिर कोई नशा नहीं, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, no illicit sex or illegal sex or sex outside marriage, no gambling, तो इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति ओके धर्मी तो कहलाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसके जो शरीर की जो रक्षा होगी, हेल्थ कैसी रहेगी, उसके पैसे की बचत होगी, और इसके रिश्ते नाते बने रहेंगे मित्रों के साथ या परिवार वालों के साथ, ये कई सारे इकोनॉमिक, सोशल और हेल्थ रीजंस, कई सारे मुनाफे, कई सारे लाभ है इसमें, इन नियमों का पालन करने से इसमें लाभ है, देश का, समाज का, मनुष्य जाति का, हर मानव का। हमने भी सुना कि नोएडा में इतने सारे अस्पताल खुल रहे हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स, आपको जमीन चाहिए तो हॉस्पिटल के लिए फटाफट आपको लैंड सैंक्शन हो। तो लोग जो होटलों में जाते हैं जहां ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वुमनाइजिंग, ये सब गैम्बलिंग, ये हम लोग होटलों में कर सकते हैं, तो यह होटल कल्चर भी फैल रहा है इंडिया में। तो दोज हु एंजॉय सो कॉल्ड एंजॉयमेंट जो होटलों में करते हैं, फिर दे गेट सिक, फिर होटलों से फिर ट्रांसफर कहाँ होते हैं, हॉस्पिटल्स में. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. तो वी नीड कुछ ऐसे यूथ चाहिए इस देश के जो केवल नाम के ही भारतीय नहीं हो, उनका पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट है बट उनका थिंकिंग नॉट जस्ट बी इंडियन बाय इंडियन होता है, लेकिन थिंक लाइक इंडियन, थिंक लाइक भारतीय, जैसे भारतीय जैसे को जैसे सोचना चाहिए. ऐसे लोगों की, ऐसे युवकों की आवश्यकता है. या कभी कभी मैं सोचता हूं कि एक प्रकार का इंडिपेंडेंस तो प्राप्त हुआ है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, लेकिन अब भी जो कई प्रकार की गुलामगिरी हमारे देश पर, एक समय तो एक ही देश का राज चलता था, अब तो हमारे देश पर कितने सारे देशों का राज चल रहा है. अनोइंगली हम समझते थे वी आर फ्री, बट वेयर यू आर फ्री, हम स्लेव्स है ऑफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, वेस्टर्न कम्युनिकेशन, वेस्टर्न मॉडर्न ये सब जो है, मैटर मटेरियलिज्म सारे, इसका इतना प्रभाव है कई सारे देशों का. तो इसका जो गुलामगिरी है, बंधन है, इन सभी से मुक्त करने के लिए वी नीड अनदर रेवोल्यूशन, और एक क्रांति. जो क्रांति ये हरे कृष्ण मूवमेंट करने के प्रयास और करने के लिए सक्षम भी है, उस रेवोल्यूशन को प्रभुपाद वैसे कहते थे रेवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस. और कई सारी फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन, कई सारे रेवोल्यूशन तो संसार ने देखी है, बट व्हाट वी नीड इज रेवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस. सो वी नीड यंगस्टर्स, यूथ्स टू join such revolution, your revolutionary agenda or mission, जिससे आप भी लाभान्वित होंगे और आपका होने वाला भविष्य में immediate family and friends and relatives and neighbors and your countrymen, the human race would be tremendously benefited. तो यही सारे ये जो विचार है इसको और प्रमोट करने के उद्देश्य से हम लोग नोएडा में एक विद्यापीठ, भक्ति वेदांत अकेडमी फॉर स्पिरिचुअल साइंसेस, BASS. बस बहुत हो गया, ये मटेरियलिज्म बहुत हो गया, बस फुल स्टॉप. तो ये जो आइडियाज है, अदरवाइज आइडियाज की आइडिया नाम का जो मोबाइल फोन है, सो मेनी नॉनसेंसिकल आइडियाज हाउ टू एंजॉय, जो आसान है वैसे एंजॉय करने की जो प्रवृत्ति मनुष्य में है, गिरने की, अधम बनने की प्रवृत्ति तो है ही, उसके लिए कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है. और बैठा है तो गिरने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन लेटा है या बैठा है तो उठने के लिए प्रयास करना पड़ता है. टू फॉल डाउन, टू फॉल प्रे टू लोअर नेचर, ये तो कोई कठिन नहीं है. तो थोड़ा कठिन कार्य करने वाले तपस्वी या कोई ऐसे युवक चाहिए, हरे कृष्ण मूवमेंट को, जो आप सभी की मूवमेंट है, ये कोई इसका मालिक कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, आप सभी की, हम सभी की ये हरे कृष्ण मूवमेंट है जो हमारे संस्कृति, हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करती है, प्रोपगेट करती है विश्व भर में। और आप जैसे ही विश्व भर में, इन चाइना, इन रशिया, इन अफ्रीका, इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे फोरम, ऐसे डिस्कशन होते हैं एंड दे आर ज्वाइनिंग, जिनका जन्म से तो ऐसा कोई संबंध नहीं था इस हरे कृष्ण मूवमेंट के साथ, या गीता भागवत के साथ, या कृष्ण राम के साथ, बट दे आर फीलिंग इंस्पायर्ड एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड तो कुछ तो फॉर्मली ज्वाइन करते हैं, सो मेनी अदर्स आर डिफरेंट ऑफिसर्स, दे आर वर्किंग पीपल, दे आर फैमिली मैन, बट दे आर सपोर्टिंग दिस कॉज। हमारे आई वॉज इन फ्लोरिडा में, हमारे एक स्थान पर इस्कॉन प्रोजेक्ट है, तो वहां एक यूनिवर्सिटी कैंपस पर पिछले 30 सालों से वह फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चलता है, और लास्ट 30 ईयर्स तो एवरी डे उस कैंपस के हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट दे कम एंड दे टेक प्रसाद, पिछले 30 सालों से प्रसाद ले रहे हैं। सो वो सब याद करते हैं हरे कृष्ण वालों को, और हरे कृष्ण प्रसाद, टेस्टी प्रसाद, हलवा दे। तो बड़े बड़े ऑफिसर बन रहे हैं एंड बट दे आर वेरी सिंपैथेटिक एंड जब भी मौका मिले सहायता करते हैं, भक्तों को मदद करते हैं, और अपने जीवन में भी उनका थोड़ा क्लीनर लाइफ, क्योंकि प्रसाद खा के वेजिटेरियन डाइट, या कई वेजिटेरियन भी बने हैं, दे आर रेगुलर अमेरिकन, रेगुलर लोग है, कोई सेवन हेडेड साधु नहीं बने हैं। कोई प्रश्न है, क्वेश्चंस, कमेंट्स? अनसिविलाइज्ड, हाँ हाँ, अनसिविलाइज्ड तो नोएडा के लोग भी हो सकते हैं ऐसे आजकल के जो मॉडर्न यूरोपियन अमेरिकन्स है वो समझते कि हम लोग सिविलाइज्ड है, या उन कईयों का कहना है, गर्व है उनको, अभिमान है प्रेजेंट डे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इतना मनुष्य तो कभी पहले सिविलाइज्ड नहीं था जितना अब है। जितना अब हम बेशरम निर्लज्ज बने हैं, एंड इन पब्लिक प्लेस ऑल्सो, बॉय एंड गर्ल, मैन वुमन, दे टच ईच अदर, एम्ब्रेस ईच अदर, हैव सेक्स, यू नो, ऑफ, तो सी दिस इज अ सिविलाइज्ड लाइफ, दिस इज सिविलाइज्ड, बट इन आईज ऑफ शास्त्रों के, शास्त्र चक्षुषा देखा जाए या साधुओं की आंखों से देखा जाए तो दिस इज अनसिविलाइज्ड। जिसको सिविलाइज्ड कहते हैं आजकल के आधुनिक जगत के लोग, दे आर अनसिविलाइज्ड। तो अनसिविलाइज्ड डजंट मीन कि वो किसी अफ्रीकन जंगल में रहने वाले लोग, या कई आदिवासी लोग, कई के गुफा ना दे, ऐसे लोग तो जो धर्म को नहीं मानते या धर्म को नहीं समझ सकते, तो जो अनसिविलाइज्ड, जिनको 3 लाख को कहा है, उनको कहा है, उन मनुष्यों को कहा, या उन मनुष्य योनि का संकेत को संकेत किया है जो हुआ धर्म को नहीं अपनाते या धर्म को नहीं समझ सकते, 1 लाख समझ सकते हैं जो कहीं भी है, योनि कहाँ कहाँ है, 1,00,000 योनि मनुष्य, 1,00,000 प्रकार के, 1,00,000 मनुष्य नहीं, 1,00,000 प्रकार के मनुष्य योनियां, और वो दूसरे 3,00,000, कुल 4,00,000 मनुष्य योनि बताई है। तो 1,00,000 धर्म को समझने की क्षमता रखते हैं, दूसरे 3,00,000 उनको कहा है, वह दूसरे शब्दों में उनको द्विपाद पशु कहा है, है तो मनुष्य, दो पैर है इसीलिए, लेकिन मैं से दे आर नॉट फुली इवॉल्व ह्यूमन, पूर्ण विकसित वो मनुष्य नहीं है, कुछ गलती से या कुछ ऐसे मनुष्य शरीर उनको मिल गया, बट दे आर नॉट रियली फिट, उनके कॉन्शियसनेस की दृष्टि से दे आर नॉट रेडी, ह्यूमन बीइंग का भाव नहीं है। एनिमलिज्म, एनिमल टेंडेंसी, तो एक श्लोक में कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर् नराणाम्। मनुष्य और पशु, पशुभिर् नराणाम्, पशु और नर, इन दोनों में 4 बातें कॉमन है, सामान्य एतत्। और वो कहा आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 कॉमन है, मनुष्य करता है तो पशु भी, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग। लेकिन जो सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स है उनमें एक एडिशनल फंक्शन है उनमें, और वो है उनका इंटेलेक्ट, उनकी बुद्धि है, उनकी हायर कॉन्शियसनेस है, जिसकी सहायता से वो धर्म को समझ सकते हैं, आत्मा का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार संभव है। तो ये जो इंटेलिजेंस, हम लोग मनुष्य जो है इज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस, तुमने कहा कि दुर्दैव से मनुष्य अपने बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है, ट्राई टू एंजॉय, आत्मा को समझने, भगवान को समझने के लिए उपयोग नहीं कर रहा है। तो जिन मनुष्यों में ऐसी बुद्धि है, जिस बुद्धि से वो धर्म को, भगवान को, अपने को समझ सकते हैं, उनको सिविलाइज्ड कहा है, और बाकी तो सारे अनसिविलाइज्ड। द होली नेम इज स्वीट, अगर रुचि नहीं आ रही, इफ वी आर नॉट टेस्टिंग, दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द होली नेम। होली नेम जितना स्वीट पहले भी था, आज भी है और रहेगा भी, तो हमारी स्वीटनेस कुछ कभी कम कभी ज्यादा, तो ये हमारे हमें ही कोई डिफेक्ट, जैसे एक रोग है, उसको क्या कहते, काबिली, एक पिलिया, मैं मराठी नाम कह रहा था जॉन्डिस जब बीमारी होती है तो जॉन्डिस के मरीज को शक्कर या उसकी मिठास ही उसको, इधर कड़ुआ है, इस बिटर शुगर कैंडी, इसको गन्ने का जूस भी चूसने के लिए कहते हैं, ये दवा समझी जाती है, इस इज अ क्योर, जॉन्डिस के लिए क्योर क्या बता दे डॉक्टर, ईट शुगर कैंडी और थोड़ा गन्ने का ईख उसको चूस लो। तो जो मरीज है और जॉन्डिस का पीलिया रोगी कहता है, नहीं इज नॉट स्वीट, फिर डॉक्टर के पास जाएगा, कहेगा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब देखो ये तो बड़ा कड़ुआ है, दूसरा कोई औषधि है। तो वैसे तो उस बीमारी के लिए और कोई औषधि नहीं है, ओनली मेडिसिन इज शुगर कैंडी, तो डॉक्टर की एडवाइस सलाह के अनुसार अगर वो रोगी शुगर कैंडी खाएगा तो उसका बीमारी से मुक्त होगा, और जितना बीमारी से मुक्त होगा उतनी मात्रा में वो शुगर कैंडी का उसको ओरिजिनल जो स्वाद है मिठास वो भी अनुभव करेगा। 25% बीमारी हट गई तो 25% शुगर कैंडी की मीठी है, आधी बीमारी हट गई तो फिर मिठास भी उसकी बढ़ गई, और जो पूरा मुक्त होगा उस बीमारी से तो 100% शुगर कैंडी का जो उतना पूरा स्वाद है वो सादा का सादा उसको अनुभव करता है। तो शुगर कैंडी इज द ओनली क्योर फॉर जॉन्डिस, देयर इज नो अदर वे। उसी प्रकार हम लोगों का भी जो रोग है भव रोग, हम भी जिस रोग से ग्रस्त है उसका नाम है भव रोग, तो उस पर भी औषधि यही है, हरि नाम ही औषधि है। तो वी शुड गो ऑन चैंटिंग, तम हमारे हमारा भी हमारी बीमारी या हमारा बुखार कभी हायर कभी लोअर जाता है, उसके साथ हमारी टेस्ट भी थोड़ी हरि नाम की हायर या लोअर होती है, लेकिन हमारे लिए और कोई पर्याय है नहीं। शास्त्रों में कहा है हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यथा। तो somehow we have to convince ourselves, और ताकि हम लोग जप करते रहेंगे। कभी हमसे कोई अपराध हो जाता है तो भी टेस्ट नहीं आ रही है, सब लोग अनुभव कर सकते हैं। या पहली बार जब टेस्ट किया तो इसका स्वाद आ गया, ऐसा कहना चाहिए कि अभी कुछ उतना ही स्वाद अब भी आ रहा है जितना, कुछ ज्यादा ज्यादा नहीं आ रहा है। नया नया जो स्वाद लेना शुरू किया ना तो डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो अभी जो स्वाद है अभी ये नहीं कि नहीं आ रहा है, जो एडिशनल आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, ऐसा प्रश्न भी होना चाहिए था। तो 10 नाम अपराध है, उसको थोड़ा हमें भली भांति समझना चाहिए। अपराध शून्य होइया ऐसा बताए, अपराध शून्य होइया लहो कृष्ण नाम। तो आज प्रातःकाल इन कक्षा में भी हम कह रहे थे दिल्ली मंदिर में कि अपराध करने की अनुमति भी दी गई है। यस एनीथिंग, they have to go.
Yes, Maharaj, it's 9:15.
Ah, Prashad is also getting cold. Okay, it's okay. We'll stop then. So you're allowed to commit offenses. Kitna? Zero. Zero, shunya. तो उन नाम हम पर कृपा नहीं करता, जब हम लोग नाम के चरणों में अपराध करते हैं तो इसका पूरा शास्त्र है। तो हमारे आचार्यों ने बड़ी कृपा की है और कष्ट भी किया है, उसको लिखा भी है 10 offenses against the holy name। तो ये तो इसका जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग ये शास्त्र समझते हो आप, बायोलॉजी बॉटनी ये सब, तो उससे भी अधिक डिटेल इन डेप्थ इस शास्त्र को समझाया है। So the serious jo students hai, serious students of the chanting of the holy name ke jo serious student hai, wo das naam aparad ko bhali bhanti samajhte hain, samajh ya aur phir talte hain taki hari naam ka adhik adhik swad mile. अपराध करने से फिर वो हरि नाम अपनी मिठास को थोड़ा छिपाता है या कृपा नहीं देता हरि नाम. सो आई थिंक क्वेश्चन आंसर सेशन वी शुड स्टॉप हियर. और प्रसाद तैयार है और क्या है? एनीथिंग एल्स? आप क्या करते हो? हाउ शुड वी वाइंड अप? So we had a few questions. Okay, so it's already wound up. Aisa kehna chahiye. That's okay. So thank you.